विभीषण ने क्या किया जगकर? गोस्वामी जी लिखते हैं, विभीषण जी जगे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरष कपि सजन चीना। क्या किया? राम राम ते ही सुमिरन कीना। विभीषण जी जगे और कैसे जगे? जगे तो भी राम 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 बोलकर जग रहे हैं। ये है जगना भक्तों। हम लोग रोज जगते हैं, कभी जगकर राम राम का स्मरण हुआ? पहले तो जगते हैं समय के बाद, फिर दौड़ कर जाते हैं बाथरूम में और एक साथ तीन तीन काम करते हैं। मैं कहूंगा नहीं कौन से, लेकिन वो होता है। हमारे कुछ भक्त ड्रामा में दिखाते हैं, परंतु भक्त का सुबह कैसा होता है? राम राम तेरी सुमिरन कीना। और जैसे ही विभीषण ने राम राम बोलकर जगे, हृदय रस कपि सजन चीन, बहुत आनंद हुआ हनुमान जी महाराज के हृदय में, और सोच लिया कि निश्चित ये कोई सज्जन है। हनुमान जी महाराज अभी नीचे नहीं आए, ऊपर आकाश में थे, और ऊपर बैठे बैठे हनुमान जी महाराज अब मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? एही सनहठी करी हूं पहचानी, साधु ते होई नकार जहाई। अब मैं कैसे भी करके ये व्यक्ति के साथ मित्रता करूंगा। क्यों? क्योंकि इनके घर में अलग से मंदिर बना है, इनके घर में तुलसी है, और ये जगते समय राम नाम ले रहा है, ये साधु है, और साधु के साथ मिलने में कभी हानि नहीं होती है, लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ, मुझे लाभ होगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, विप्र रूप धरी वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। ब्राह्मण का रूप लेकर हनुमान जी महाराज विभीषण के पास गए, करी प्रणाम पूछी कुशलताई, विप्र कहूं निज कथा सुनाई। विभीषण जी खड़े हुए और ब्राह्मण, हनुमान जी महाराज ब्राह्मण के रूप में उनको देखकर प्रणाम किए, और विभीषण जी ने कहा कि ब्राह्मण देवता बताइए, आप क्यों यहां पर आए हो, क्यों विचरण कर रहे हो? कि तुम करी दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। आप हरि के दास में से कोई एक हो। हे प्रभु, ये विभीषण जी हनुमान जी महाराज को कह रहे हैं, आप कौन हो? आपके प्रति मेरा स्वाभाविक प्रेम उमड़ रहा है, आपके प्रति मेरा लगाव हो रहा है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयउ मोहि करन बड़भागी। क्या इस ब्राह्मण के वेश में आप साक्षात राम तो नहीं हो, या राम के दास तो नहीं हो, आप कौन हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने सारी कथा बताई कि महाराज, मैं और कोई नहीं, मैं राम का दूत, राम का दास हनुमान हूं। और राम के बारे में बताया, इस प्रकार से रावण ने सीता का हरण किया, भगवान बहुत दुखी अवस्था में है, सीता का अन्वेषण करने के लिए आया हूं। जब विभीषण को पता चला कि ये राम के दास हनुमान है, विभीषण ने गले लगा लिया, दोनों एक दूसरे के गले लगे हैं, हृदय में पुलक आनंद छा गया है, और दोनों फिर बैठे। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को कहा, बताइए विभीषण जी, आपका भजन साधन कैसे चल रहा है? देखिए, दो भक्त आपस में मिले हैं, जब दो भक्त आपस में मिलते हैं तब क्या चर्चा होनी चाहिए, ये रामायण सिखाती है। अरे सखी, ये साड़ी कौन सी दुकान से ली, बहुत अच्छी है, है? और यहां कौन सा शेर का भाव अब अच्छा चल रहा है? जब भक्त आपस में मिलते हैं तब क्या होता है, दोनों भक्त और भक्ति की सीमा में है दोनों। हनुमान जी ने पूछा, सुनहु पवन सुत। हनुमान जी ने जब पूछा कि आपका भजन साधन कैसे चल रहा है, तब अब विभीषण जी संवाद शुरू होता है। विभीषण जी कहते हैं कि हे पवन सुत, हे पवन के पुत्र,
सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनी हमहु जीभ विचारी।
अद्भुत बात बताई। आप मुझे ये पूछ रहे हो मेरी भक्ति कैसे चल रही है? हनुमान जी महाराज, जैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है, वैसे असुरों के बीच में मैं रह रहा हूं। कितना सुंदर, एक एक सूत्र में सब कुछ बता दिया। आप कभी विचार करो अपने घर पे बैठकर कि ये 32 दांत के बीच में जो जीवा है उसकी स्थिति कितनी बिगड़ी हुई है जानते हैं? कितना सोच समझ कर रहना पड़ता है ये हमारी जीवा को है? थोड़ा भी कुछ हुआ तो दांत के बीच में कच करके आ जाती है। अभी मैं बोल रहा हूं तो जीवा सतर्क है, मुंह बंद कर रहा हूं तो वो पीछे जा रही है, खोल रहा हूं तो आगे है, ऐसे वैसे है। 32 दांत के बीच में जैसे जीवा की हालत है, ये असुरों की नगरी में मेरी हालत है ऐसी है। हनुमान जी महाराज, भजन साधन नहीं हो रहा है और मैं राह देख रहा हूं कब प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे। तात कब हूं मोही जानी अनाथा, करिहि कृपा भानुकुल नाथा। मैं राह देख रहा हूं हनुमान जी महाराज, अब आप बताइए भानुकुल भगवान रामचंद्र कब मुझ पर कृपा करेंगे? ये विभीषण जी कह रहे हैं भगवान राम मुझ पर कब कृपा करेंगे, कब कृपा करेंगे? तब तक विभीषण ही कहने लगे मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, मुझ पर कृपा नहीं होगी। क्यों?
तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन मान।
हनुमान जी महाराज, प्रभु मुझ पर कृपा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तामस वेश असुरों के कुल में हूं, ये असुर का शरीर धारण हुआ है, कछु साधन नहीं और न तो कुछ साधन कर रहा हूं, न कोई साधन, जन्म भी अच्छे कुल में नहीं, साधन भी अच्छे कुल में नहीं, और प्रीति न पद उस कमल पद भगवान रामचंद्र के चरणों में प्रेम भी नहीं है, मुझ पर भगवान कृपा नहीं करेंगे। मेरे में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे भगवान मुझ पर कृपा करें। लेकिन कुछ समय के बाद विभीषण जी के मन में यह बात याद आई कि मेरी ओर से तो पूर्ण कमी है, मेरी ओर से तो कुछ है ही नहीं, परंतु हनुमान जी महाराज आज हमारे घर पर आए हैं, एक संत, एक महात्मा, एक भक्त घर पर आए हैं। हनुमान जी महाराज, आज एक भक्त मेरे घर पर आए हैं, आप संत मेरे घर पर आए हो, मेरी ओर से तो मेरे मन में यही है कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं करेंगे, लेकिन आप मेरे घर पर आए हो इसलिए मुझे विश्वास करना होगा कि राम की मेरे पर कृपा है, क्योंकि बिना राम की कृपा के संतों का मिलन नहीं होता।
अब मोहि भार भरस हनुमंता।
रामायण की प्रसिद्ध चौपाई है ये सब।
अब मोहि भार भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। अब मोहि भार भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता।
वास्तव में बिन हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं भक्तों, संत साधु भगवान की कृपा से मिलते हैं, और साधु जब चले जाते हैं ना, समझ जाना चाहिए भगवान की कृपा उठ गई है। हमारे परिवार से, हमारे घर से, हमारे अपने प्रजा से यदि कोई साधु चला गया, समझ लेना चाहिए भगवान की कृपा चली गई है। रामायण में वर्णन है विभीषण जी भगवान के परम भक्त थे, और जब रावण आ गए, भगवान राम लंका में आ गए, रावण युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, विभीषण रावण के पास गया, भैया अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझ जाइए, आप प्रभु राम के साथ युद्ध मत कीजिए, युद्ध मत कीजिए। विभीषण ने जब बहुत बहुत समझाया, रावण को बहुत क्रोध आया और विभीषण को लात मार दिया। और रावण ने कहा, नमक हरामी कर रहा है, भोजन मेरा खा रहा है और राम की गुलामी कर रहा है, चला जा लंका को छोड़कर। उस समय वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण ने विभीषण को नहीं, रावण ने अपनी आयु को ठोकर मार दिया। विभीषण जी लंका से नहीं निकले, विभीषण रावण की आयु को लेकर लंका से निकल गए। एक भक्त जब किसी परिवार से चला जाता है, समझ जाना चाहिए, पतन निश्चित है। यही बात मैत्रेय मुनि ने भागवत के तृतीय स्कंद में जब विदुर जी हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए, वहां पर यही बात कही। विदुर जी हस्तिनापुर को नहीं छोड़े, हस्तिनापुर में रहने वाले कौरवों की आयु को छोड़ दिए, कौरवों की मृत्यु उस दिन निश्चित हो गई, जिस दिन विदुर जी महात्मा विदुर वहां से निकले। नहीं तो जब तक विदुर जी दुर्योधन के साथ होते, दुर्योधन को कोई नहीं मार सकता था, महाभागवत थे विदुर जी। लेकिन दुर्योधन ने ठोकर मार कर निकाल दिया, क्यों? क्योंकि जब किसी व्यक्ति का विनाश काल नजदीक आता है, पहले बुद्धि बिगड़ जाती है, बुद्धि। चाणक्य पंडित ने लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल नजदीक आता है, तब सबसे पहले बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धि बिगड़े तब समझ लेना चाहिए विनाश का काल है। विभीषण जी महान भक्त है और बहुत सुंदर संवाद एक दूसरे के प्रति। हे, मुझे अब तक ये विश्वास नहीं था कि भगवान मिलेंगे, परंतु अब मोहि भाव भरस हनुमंता। हे हनुमान जी महाराज, अब तो पूरा पूरा भरोसा हो गया है कि भगवान मिलेंगे, क्योंकि आप एक भक्त, एक संत, एक महात्मा मेरे घर पर आए हैं, निश्चित भगवान आएंगे। जिसके घर पर वैष्णव का आगमन हुआ हो, संत और महात्मा का आगमन हुआ हो, समझ लेना चाहिए एक ना एक दिन भगवान आएंगे। ये भगवान के आने की निशानी है, भगवान के आने की निशानी। जो रघुबीर अनुग्रह किन्हा, तो तुम मोही दरसु हठी देना। हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। विष्णु महाराज आप सुनिए, भगवान सदैव अपने सेवक पर प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं। अब हनुमान जी महाराज अपना बता रहे हैं, रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में कहा है, जब आप एक दूसरे भक्तों के साथ आपस में मिलते हो, तब क्या करना चाहिए? ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंगते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, दोनों को, भक्तों को अपनी अपनी बात बतानी चाहिए। विभीषण ने अपनी बात बताई, अब हनुमान जी अपनी बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? विभीषण महाराज, आपके ऊपर भगवान कृपा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप मेरी सुनिए, मेरा देखिए। कहूं कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन से बड़े कुल का हूं, मैं तो एक पशु कुल का हूं, पशु जाति में मेरा जन्म हुआ, मैं एक वानर हूं, मैं कोई परम पवित्र कुल में जन्म नहीं लिया। और कपि चंचल सब ही विधि ही ना, और सबसे चंचल पशु हूं। हनुमान मतलब जो वानर होते हैं, बंदर होते हैं, सबसे चंचल होते हैं। वृंदावन में आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे, चश्मा लेकर चले जाते हैं, बताओ उनको उनको क्या पढ़ना है, लेकिन फिर हमारे सामने पहन कर बैठ जाते हैं, है? बहुत चंचल होते हैं, एक जगह पर एक स्थान पर नहीं बैठते हैं। बोले मैं उस कुल का हूं और चंचल हूं, और प्रात ले ही जो नाम हमारा, और सुबह सुबह उठकर मेरा नाम भी कोई ले ले, बंदर का नाम भी कोई ले ले, तो उनका पूरा दिन बिगड़ जाता है। तही दिन ताही न मिले आहारा, उस दिन उसको भोजन नहीं मिलता है। मेरा नाम जो कोई एक बार ले ले, उसको भोजन नहीं मिलता है। अस में अधम सखा सुनू, मोह पर रघुबीर किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन। हे मित्र, ऐसा पशु कुल में जन्म लेकर चंचल होते हुए भी आज राघव ने, राम ने, रघुवीर ने मुझे अपना दास बनाया है, मुझे अपना बना दिया है, अपना मित्र बना दिया है। वास्तव में इसे कहते हैं भगवान। भगवान मित्र बनाने में ये उच्च है, ये नीच है, ये नीच कुल का है, छोटा बड़ा है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं एक वानर हूं, चंचल हूं, मुझे देखकर दिन बिगड़ जाता है, भोजन नहीं मिलता है, फिर भी भगवान ने मुझे सखा बना लिया है। भगवान वास्तव में मित्र मिले तो भगवान जैसा है, कैसा मित्र है। भगवान कृष्ण ने सुदामा को सखा बनाया, नहीं तो एक और कृष्ण को देखिए दुनिया की सभी सीमा रेखा, सभी धन धान्य सब कुछ उनके पास, और एक और सुदामा फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अरे खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, एक एक महीने से भूखे थे सब लोग। लेकिन ऐसे लोगों के साथ भी भगवान अपनी मित्रता रखने में शर्म नहीं करते। आपने देखा जब सुदामा द्वारका में गए और उस द्वारपाल ने कहा, शीश पगान जगातन पे, कहां से आई बसे के ही गामा, हे प्रभु पता नहीं है वो कौन से गांव से आया है, किस गांव में रहता है, धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपान की नहीं सामा, परंतु इतना पता है कि एक फटी हुई धोती पहनी है, एक हाथ में लकुटी है और बेचारा कांप रहा है। भगवान ने पूछा, उसका नाम पूछा तुमने? तो द्वारपाल ने कहा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा शब्द सुनते ही भगवान कृष्ण सोने के पलंग से दौड़ गए, दौड़ गए। जो कृष्ण द्वारका में आज तक तेज गति से चले नहीं थे, वह दौड़कर सुदामा के पास गए और सुदामा को अपने अखबार में भर लिया। उसको एक सेकंड के लिए भी यह नहीं हुआ कि मैं करोड़पति अरबपति का बाप एक भिखारी के साथ मित्रता करके बैठा, थोड़ा भी हर्ज नहीं। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं मित्रता। वास्तव में मित्रता निभाना भगवान जानते हैं। यहां तक कि भगवान सुदामा को गोद में उठाकर अपने सोने के सिंहासन पर बिठा दिए और सुदामा के चरण को भगवान धोने लगे। वहां पर उस कवि ने बहुत सुंदर कहा है कि भगवान ने अपनी 16,108 पत्नियों को कहा, जल लेकर आओ, सुदामा के चरणों को धोना है। सब लोग जल लेकर आई, भगवान श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोने के लिए बैठे, परंतु सुदामा के चरणों में बहुत बहुत कांटे लगे थे, पांव फट गया था, खून निकल रहा था। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की उस दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, करुणा का सागर रोने लगा। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा के चरणों को धोने के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ी भक्तों, भगवान ने अपने आंख के आंसू से सुदामा के चरणों को धो दिया। ये है मित्रता, ये है मित्रता। और भगवान बार बार यही कह रहे थे, मित्र एक बार तो याद कर लिया होता, इतनी दरिद्रता इतना दुख, कम से कम एक बार इस कृष्ण को याद कर लिया होता तो ठीक हो जाता। तो सुदामा जी इतना ही कहते थे, मैंने याद नहीं किया, क्या आपको नहीं पता था मैं दुखी अवस्था में। भगवान सखा बना, भगवान कभी भी हर्ज नहीं करते। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भगवान राम अपने भक्तों को कैसा भी क्यों ना हो उसे अपना लेते हैं। गीता में भगवान ने साफ साफ इस सिद्धांत को बताते हुए कहा, अपि चेत सुदुराचारो, हे अर्जुन यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुराचारी हो, कितना भी पापी हो, कितना भी पाप किया हो, परंतु वह यदि मेरी भक्ति करने लगता है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, यदि अनन्य भाव से मेरी भक्ति करने लगे वह साधु है, मैं उसको साधु का सर्टिफिकेट देता हूं, साधु एवस मंतव्य, मेरे मत से वह साधु है, और आप लोग उसे साधु नहीं मानोगे आप लोग मरोगे मेरे हाथों से। भजन करने वाला साधु है, फिर उसका भूतकाल नहीं देखा जाता है, उसका पास्ट नहीं देखा जाता है। भगवान सदैव अपने भक्तों की ब्राइट साइड देखते हैं, उनके गुण देखते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों के दोष नहीं देखते हैं। जानत हूं अस स्वामी बिचारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। ऐसे स्वामी हमें मिले हैं, हम कैसे दुखी हो सकते हैं। निश्चित प्रभु आपको दर्शन देंगे। मैं आया हूं देवी सीता को ढूंढने के लिए, प्रभु सीता कहाँ मिलेगी। तब विभीषण जी ने पता बताया, आप अशोक वाटिका में जाइए, रावण का बगीचा है, वहां सीता को कैद करके रखा है। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के वहां से निकले हैं, सीता जी के वहां पहुंचे। हनुमान जी महाराज एक वृक्ष पर बैठकर अन्वेषण किए। सीता को पहचानने के लिए भगवान राम ने अंगूठी मुद्रिका दी, हनुमान जी ने फेंकी। सीता जी ने भगवान राम को याद किया, हनुमान जी समझ लिए ये सीता है। नीचे उतरकर देवी सीता को प्रणाम किए, माते मैं हनुमान आपके प्रभु का दास हूँ, दूत हूँ और आपको देखने आया हूँ। हे माँ, अब आपके दुख के दिन बहुत कम दिन के लिए हैं, आपके जीव बहुत जल्द आपके जीवन में अब सुख आने वाला है। प्रभु बहुत जल्द यहाँ पर आएंगे और आपको लेकर जाएंगे। उस समय हनुमान जी महाराज ने अपनी परवशता व्यक्त की कि माते माते मैं यदि चाहूँ ना एक सेकेंड में आपको यहाँ से भगवान के पास लेकर जा सकता हूँ, मुझे देरी नहीं लग सकती है, आपको यहाँ से एक सेकेंड में उड़ाकर भगवान के पास पहुँचा दूँ, परंतु मैं मजबूर हूँ, जब मैं वहाँ से निकला तब प्रभु ने मुझे आज्ञा नहीं दी थी। कितने बड़े दास हैं, प्रभु ने एक बार भी मुझे कह दिया होता सीता को देखते ही लेकर आ जाना तो मैं आपको लेकर आ जाता, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, साक्षात प्रभु आएंगे, रावण का वध करेंगे और आपके साथ अनेक देवांगनाओं का उद्धार करेंगे। परंतु मैया मुझे बहुत भूख लगी है। बोले तुमने कुछ खाया नहीं। बोले क्या खाऊं, सब जगह पर नॉनवेज मिल रहा है। लंका थी ना, लंका है, यहां पर असुरों की बस्ती है, नॉनवेज के अलावा ये नॉनवेज खाने का काम असुरों का है, सब जगह पर नॉनवेज है, मांसाहार है, क्या खाऊं। बात भी ठीक है, यहाँ आपके खाने लायक कोई चीज नहीं है, लेकिन बाजू में रावण का एक बगीचा है, वहां पर जाओ और बहुत सुंदर फल लगे हैं, लेकिन ध्यान रहे नीचे पड़े हुए फल को ही खाना, वहां बहुत टाइट सिक्योरिटी है। माते आप टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो। अब हनुमान जी को कहा गया था कि नीचे पड़े हुए को खाना, अब हनुमान जी गए बगीचे में, जो वृक्ष पर फल अच्छा लगा वृक्ष को ऐसे मारते थे, वृक्ष गिरता था और फिर फल को खाते थे। धीरे 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 करके रावण के बगीचे के अच्छे अच्छे सारे वृक्ष गिरने लगे। वो गुरखे लोग आए, बिल्डिंग का गुरखा होता है ना, वो गुरखे आए आए तो हनुमान जी को बांधने का, पकड़ने का, मारने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपना बचाव किया और सबको मार डाला। फिर रावण ने सिक्योरिटी गार्ड को भेजा, गुरखे से थोड़े ऊपर होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को भेजा। बहुत सारे लोग आए रावण को, हनुमान जी को मारने के लिए। हनुमान जी ने सबको मार डाला। रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा, ये पिक्चर वाला नहीं फिल्म वाला, क्योंकि हमारी बुद्धि बस उसी में लगी हुई है, तो अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने अक्षय कुमार को भी मार डाला, स्वाहा। अब क्या करे, जितने को भेज रहे सबको मारते जा रहा है, और रावण के मन में यह हुआ कि एक वानर आया है और इतने लोगों को मार डाला, कौन है वो, अब तो मैं देखना चाहता हूं। अपने पुत्र मेघनाद को भेजा, जिसका जन्म हुआ था तब मेघ का नाद हुआ था, परम पराक्रमी था। और रावण ने कहा कि इसको मारना मत, बांध कर लेकर आना, मुझे देखना है कैसा वानर है। मेघनाद आया और मेघनाद आकर रावण को अपने पास में बांध दिया, क्षमा कीजिए हनुमान जी महाराज को अपने पास में बांध दिया मेघनाद ने, और मेघनाद को बांधकर, हनुमान जी को बांधकर मेघनाद लेकर जा रहे हैं। तब ये कथा सुनाते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि आप लोग संशय में मत पड़ना कि मेघनाथ ने हनुमान जी महाराज को बांध दिया है। हनुमान जी महाराज को दुनिया की कोई ताकत बांध नहीं सकती है। उन्होंने बहुत सुंदर कहा, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन कटहु नर ज्ञानी, तासु दूत बंद करी आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंदावा। हे देवी, हे भवानी, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिस प्रभु का एक बार कोई नाम ले लेता है ये भव बंधन से मुक्त हो जाता है। उस प्रभु के कार्य करने के लिए हनुमान निकला है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। ये तो हनुमान जी महाराज को रावण को देखना था, मेरी माँ का अपहरण करने वाला है कौन आखिर, हनुमान जी को देखना था इसलिए बंध गए। ये तो पवन तनई, पवन पुत्र को कौन बांध सकता है, बांध दिया। और बांध कर रावण की सभा में हनुमान जी महाराज शेर की तरह, सिंह की तरह रावण की सभा में हनुमान जी को बंद कर खड़ा रखा गया है। रावण ने पहले ही पूछा, कह लंकेश कवंते कीसा, कही के बल गाल ही बस सीसा। कह लंकेश, उस लंकापति रावण ने उस दिन कहा कि हे अरे वानर मूर्ख, तूने मेरे आदमी को क्यों मारा, पहले ये बता। हनुमान जी महाराज ने कहा, देखो मैंने आपके एक भी आदमी को मारा नहीं। बोले तो ये मैं गलत सुन रहा हूं, ये इतना आंकड़ा आया है इतना लंबा। बोले तूने मेरे आदमी को क्यों मारा। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैंने किसी को नहीं मारा। तो बोले वो लोग कैसे मरे। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैंने नहीं मारा, वो लोग मुझे मारने के लिए आए। अपना देह किसको प्रिय नहीं होता है, वो लोग मुझे मारने के लिए आए और मैं मेरा बचाव कर रहा था। आप कभी कराटे सीखे हो, कराटे में जब कोई ऐसे मारता है, इच नी शंशी गो रुख शेष हश कुजू ऐसे करके जब ऐसे मारता है तो ऐसे सिखाया जाता है, ऐसे मतलब ऐसे जब कोई मारेगा तो ऐसे करके अपना बचाव करता है करने के लिए। तो जब ऐसे करते हैं तो ये किसी को मारा नहीं माना जाता है, ये अपना बचाव। तो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, मैंने किसी को मारा नहीं, वो लोग मुझे मारने आए, मैं मेरा बचाव करने गया, तो मेरा स्पर्श होने से आपके आदमी मर गए, आप खिलाते पिलाते नहीं हो, मैं क्या करूं, मैं तो मेरा बचाव कर रहा था, मैं थोड़ी ना, मैं किसी को नहीं मारा। रावण की सभा में हनुमान जी महाराज बोले, अच्छा तू कौन है, कहां से आया है, कौन है। हनुमान जी महाराज ने कहा, अपनी पहचान थोड़ी लंबी है। 10 चौपाई में हनुमान जी महाराज ने अपनी चौपाई अपनी पहचान बताई। रावण तो ये जानना चाहता है मैं कौन हूं। बहुत बहुत हनुमान जी महाराज ने बताया कि जो प्रभु इस संसार का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं, प्रलय करते हैं, इस संसार के सब लोग जिस माया के माया में मोहित होकर नाचते हैं, जिसकी शक्ति ये माया है, और रावण जो तुझे शक्ति दे रहा है, जिससे तुझे शक्ति मिल रही है, ऐसे प्रभु रामचंद्र का मैं दूत हूं, दासोस में दूत हूं। हनुमान जी महाराज इस प्रकार से रावण की सभा में, और हनुमान जी महाराज अब प्रवचन शुरू किए लंका में। बोले रावण जी, अभी भी मैं आपको कहता हूं, सीता देवी को छोड़ दीजिए, और यदि आप सीता देवी को नहीं छोड़ेंगे बहुत बुरा होगा, आपको मरना पड़ेगा, रामचंद्र आएंगे और आपको मार डालेंगे। ये जो आपने देखा ना, ये गार्डन में क्या हुआ, ये तो मात्र एक सैंपल था रावण महाराज, और इसमें भी मैंने मेरी शक्ति का इस्तेमाल तो किया ही नहीं था, मैंने केवल मेरी रक्षा की। रावण जी, जब उस राम के दूत में ये शक्ति है, विचार करो उस प्रभु में कितनी शक्ति होगी, ये सोचकर, कम से कम ये सोचकर आप सीता को छोड़ दीजिए। रावण माना नहीं, हनुमान जी ने बहुत बहुत मनाया, रावण माना नहीं। अंत में रावण को क्रोध आया, मेरी गली में मेरे घर में आकर मुझे प्रवचन, मार डालो इसे। उस समय विभीषण ने कहा कि भैया ये एक दूत है, और दूत को मारना अनीति है, इसे मारो मत, इसका अपमान कर दो। ठीक है, रावण ने कहा इसका अपमान करो, अपमान कैसे किया जाए, ये बंदर को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है, पूंछ बहुत पकड़ के रखते हैं, एक काम करो, इसकी पूंछ जला दो। तो बंदर हनुमान जी महाराज के ऊपर कपड़ा और ईंधन लगाया तो पूंछ लंबी हो गई। तो रावण के घर में जितना भी कपड़ा, ईंधन, पेट्रोल, डीजल जो भी था सब कुछ लाया और लगाया, लेकिन और लंबी होती गई। रावण ने कहा चलो सब लोग अपने अपने घर घर जाओ और लेकर आओ कपड़े, ईंधन सब। तो कुछ लोग रावण के जो भक्त हैं दौड़ कर गए, हनुमान जी महाराज देख रहे थे किसके घर से कितना आ रहा है, है? फिर ये यथामाम प्रपद्यन्ते करना है, जिसके घर से जितना आया था बाद में हनुमान जी महाराज ने उसके घर को उतना जलाया है? सब लोग अपने अपने घर से लेकर आए हनुमान जी महाराज की पूंछ के ऊपर कपड़े, ईंधन। रावण की लंका में से पूरा ईंधन समाप्त हो गया और फिर हनुमान जी महाराज की पूंछ को जलाई। हनुमान जी महाराज भगवान राम का नाम लेकर आकाश के मार्ग से उड़े और जिस जिस घर से जितना ईंधन आया था उसको उतना जला दिया। सारी लंका जलकर राख हो गई। समुद्र में अपनी पूंछ बुझाकर हनुमान जी महाराज भगवान रामचंद्र के पास पहुंच गए। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, जब जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज आप लंका में जाओ, लंका में जाओ, तब जाते समय हनुमान जी ने कहा कि जामवंत जी वहां जाकर करना क्या है वो तो कहो। जामवंत जी ने कहा था देखो हनुमान जी महाराज, हम पहले ही बोल देते हैं वहां जाकर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीता को देखकर केवल वापस आ जाना है। जब जामवंत जी ने इतना कहा था कि कुछ नहीं करना है, तब इतना उत्पात मचा कर आए, यदि कह दिया होता कि जो मन में आए कर देना, तब तो हनुमान जी महाराज पूर्ण विराम लगाकर आ जाते, रामायण खत्म करके आ गए होते हनुमान जी महाराज, इतने प्रभावशाली थे। आए हनुमान जी महाराज वापस, भगवान रामचंद्र से मिले, भगवान रामचंद्र ने धन्यवाद दिया और फिर आगे चलकर समुद्र के ऊपर सेतु बनाया गया। उस सेतु के ऊपर चलकर भगवान राम लंका में आए और लंका में आकर फिर अनेक मंदोदरी और रावण का अद्भुत संवाद है और भगवान राम रावण को जोगेश्वरी में नहीं मारेंगे, विरार में मारेंगे। रावण को विरार में मारा जाएगा और काकभूषण डी जी का प्रवचन आने वाले साल इसी स्थान पर भगवान की कृपा रही तो हम करेंगे। परंतु इस कथा के, क्योंकि आज अंतिम दिन और अंतिम घड़ी चल रही है, इसलिए सार बात आपको बता दूं हमें लेकर क्या जाना है। अब देखिए रामायण के महान पात्र हनुमान जी महाराज कितने पराक्रम किए हैं और भी आगे चलकर जब मेघनाथ के साथ लक्ष्मण जी का सामना हुआ और मेघनाथ का बाण लक्ष्मण को लग गया, उस समय रात को बहुत बड़ा प्रश्न था अब क्या करे क्या करे। तब जामवंत जी ने कहा कि लंका में एक वैद्य रहता है, एक डॉक्टर रहता है, उस वैद्य को लेकर आओ। बोले किसको भेजे, तब हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी महाराज आइए और लंका में से वो वैद्य है उसको लेकर आओ। हनुमान जी महाराज उस वैद्य को नहीं, वैद्य के पूरे घर को नीचे से उखाड़ कर लेकर आए। आचार्यों ने बहुत भाव दिए, ये रामायण कभी कंप्लीट हो नहीं सकती है, 500 वर्ष तक यदि बोली जाए तब भी ये पूर्ण विराम नहीं लग सकता है। बोले हनुमान जी महाराज आप ये डॉक्टर के साथ साथ पूरे क्लिनिक को लेकर आए, पूरे घर को क्यों लेकर आए। हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो ये लक्ष्मण जी को चेक करेंगे, फिर कहेंगे इंजेक्शन घर पे भूल गया, फिर कौन जाए और आए, उसे अच्छा है पूरा घर ही उठा कर लेकर आया, सब कुछ इसी में से ही कर दो, जाना आना देरी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज अनेक पराक्रम आप देखिए और उस पराक्रम के पीछे राज क्या है, इस कथा से हमको यह लेकर जाना है। एक से एक कार्य, यहां तक कि जो कार्य भगवान नहीं कर पाए वो कार्य हनुमान ने किया। फिर वो सुषेण नाम के वेद ने कहा कि ये लक्ष्मण जी का जीना मुश्किल है, कल सुबह सूर्य उदय होने से पहले यदि संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी के पास लाई जाए और लगाई जाए तब जीवित रह सकते हैं, नहीं तो सूर्य उदय होते ही लक्ष्मण जी। तब राम ने पूछा ये संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी। सुषेण वेद ने कहा ये बूटी तो भारत में, और भारत में भी उत्तराखंड हिमालय में ये बूटी मिलेगी। और कितना किलोमीटर लंका, और कहाँ भारत, कहाँ लंका, और कहाँ भारत का हिमालय है, प्रश्न उठा। आप कौन जाए। हनुमान जी महाराज ने कहा प्रभु आप निश्चिंत रहिए। भगवान राम कहने लगे प्रभु हनुमान जी महाराज जरा ध्यान रखिएगा, वेद ने कहा है सुबह होने से पहले वापस आना है। हनुमान जी ने कहा प्रभु डरो मत, सूर्य को उगने नहीं दूंगा, प्रैक्टिस है सूर्य को खाने की है, उगेगा तो लक्ष्मण जी मरेंगे ना, आप निश्चिंत रहिए प्रभु जी। बचपन में सूर्य को खाने के लिए दौड़े हनुमान जी महाराज, और आए हनुमान जी महाराज यहां पर। और वास्तव में ये संजीवनी बूटी के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य आचार्यों ने उद्घाटित किया है। बीच में भगवान श्री रामचंद्र शबरी जी के वहां गए थे, शबरी भगवान राम की परम भक्ता थी, भगवान गए और शबरी ने बड़े प्रेम से भगवान को भोग खिलाया भोग, परंतु शबरी ने देखा कि ये जो बेर है खट्टे बेर में मेरे प्रभु को कैसे दे सकती हूं, तो पहले बेर वह शबरी खुद चखती थी, मीठा होता तो भगवान राम को देती, शबरी के झूठे बेर भगवान राम खाते थे। प्रभु आखिर भाव देखते हैं भक्तों, भाव होना चाहिए। ये तो त्रेता युग की कल का इतिहास, हमारे जगन्नाथपुरी में कर्माबाई नाम की एक जगन्नाथ जी की भक्ता थी, रोज जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर सुबह 8 बजे खिलाती थी, और जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से अपने मंदिर से निकलकर, मंदिर का बंद होने का समय और जगन्नाथ जी के आने का समय, और भक्तों कर्माबाई धीरे 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 करके बूढ़ी हो गई, अब तो घर का काम भी ठीक से नहीं हो पाता था, लेकिन वो खिचड़ी कैसे बनाती थी, सुबह उठने में लेट हो जाता था और जगन्नाथ जी के खिचड़ी खाने का समय हो जाता था, तब सुबह उठकर एक पात्र में चूल्हे के ऊपर रखकर पानी और खिचड़ी का सामान डाल देती थी, फिर दातुन लेकर बैठ जाती थी, फिर उस पात्र का ढक्कन खोलकर दातुन के दूसरे छोर से खिचड़ी को हिलाती थी और उसी से ही दातुन हिलाती थी। हृदय पर हाथ रखकर कहिए ऐसी खिचड़ी आपको दी जाए तो खाओगे, परंतु प्रभु अपने 56 भोग अपने सभी प्रकार के ऐश्वर्य को छोड़कर जगन्नाथ मंदिर से निकलकर कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाने के लिए आते थे। भक्तों ये इतिहास साक्षी है। वह कर्माबाई की एक दिन मृत्यु हो गई और अचानक जगन्नाथ जी के मंदिर में वह जगन्नाथ जी के पंडों ने जब पट खोला, जगन्नाथ जी की आंखों से अश्रु की धारा निकल रही थी, आंसू बंद नहीं हो रहे थे। पुजारियों ने पूछा प्रभु आज इतने क्यों रो रहे हो, तब जगन्नाथ जी ने कहा कि आज मेरी माँ चली गई है, मुझे खिचड़ी खिलाने वाली आज चली गई। तब पुजारियों ने कहा कि प्रभु कोई बात नहीं, कर्माबाई के नाम से हम लोग आपको खिचड़ी का भोग लगाएंगे जो आज भी लग रहा है जगन्नाथ जी को। भाव ग्रही जनार्दन, भगवान भाव देखते हैं। अन्य इस संसार के जो मनुष्य है वो भाव नहीं वो कार्य देखते हैं, देवी देवता भाव नहीं कार्य देखते हैं, परंतु हमारे भगवान जो है ना राम और कृष्ण ये कार्य को नहीं देखते हैं, ये भाव को देखते हैं। आप किस भाव से जा रहे हैं। शबरी ने झूठे बेर दिए भगवान ने खाए, लेकिन लखनलाल नहीं खाए। लखनलाल बेर को लेते थे लेकिन पता नहीं चले पीछे से फेंक देते थे, लेकर फेंक देते थे। असम एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जब ये रावण का वध हो गया, सब लोग अयोध्या आ गए, भगवान राम अयोध्या के राजा बन गए, सब लोग प्रसन्न थे, परंतु एक दिन लक्ष्मण अपने महल की टेरेस में जाकर खड़े थे और चिंतित थे। भगवान राम को बुलाया प्रभु प्रभु एक प्रश्न मेरे हृदय में बहुत सता रहा है, बहुत प्रश्न सता रहा है। बोले क्या है लखन बोलो। बोले प्रभु हमारा जन्म एक पिता के घर पर हुआ है। बोले बात तो सही है। बोले हमारी शिक्षा भी एक गुरुजी के आश्रम में हुई। बोले ये भी बात सही है, बोले हम लोग वनवास में भी एक साथ गए, बोले ये भी बात सही है। तो प्रभु प्रश्न ये है कि मेघनाद का बाण मुझे ही क्यों लगा, आपको क्यों नहीं लगा? जीवन की सारी घटना जब समान हुई, जीवन में प्रत्येक कदम प्रत्येक पहलू में हम लोग साथ में रहे, तो फिर मेघनाद का बाण मुझे ही लगा, आपको क्यों नहीं लगा? तब भगवान राम ने उत्तर देते हुए कहा था, लखन तुम्हें याद है जंगल में भटकते हुए हम लोग एक दिन शबरी के आश्रम में गए थे? बोले हाँ। शबरी ने बड़े प्रेम से बेर खिलाए थे? बोले हाँ। बोले वह बेर में खा रहा था, और लखन याद है बेर तुम फेंक रहे थे? लखन वह बेर जहां पर द्रोणगिरी पर्वत पर गिरे ना, वह बेर संजीवनी बनकर प्रकट हुए, वह बेर खिलाने के लिए तुम्हें मेघनाद से हाथों से मूर्छित होना पड़ा। मेरे साथ यदि बेर खा लिया होता तो मेघनाद का बाण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये है भक्तों का भाव। तो इस प्रकार अनेक प्रसंग, अनेक गहराई इतिहास है। हनुमान जी महाराज गए और हनुमान जी महाराज ढूंढे संजीवनी इसमें है कौन। बोले यदि यहां से यह संजीवनी लेकर गया और वहां जाकर वैद्य ने कहा यह संजीवनी नहीं है, तब और कौन जाएगा और आएगा? हनुमान जी महाराज पूरा पर्वत लेकर ही चले, पूरा पर्वत ले लिए अपने हाथ में, और हनुमान जी महाराज पवन के वेग से लंका में आए। सुषेण वेद ने संजीवनी को लिया, लक्ष्मण के ऊपर लगाया, लक्ष्मण जी मूर्छा से मुक्त हुए, और उस समय भगवान राम दोनों हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज को इतना ही कहे कि हे हनुमंत, हे हनुमंत, रघुकुल की 21 पीढ़ी तुम्हें कभी भूलेगी नहीं। आज ये सूर्य वंश हनुमान तुम्हारा दास हो गया, तुम्हारा ऋणी हो गया है, क्योंकि आज तुमने मेरे भाई को जीवित करा दिया। भगवान राम चरणों में गिर गए। हनुमान वास्तव में आज तुमने मेरे प्राण को बचा लिया। भगवान का कार्य हनुमान जी महाराज ने किया है, दास थे परंतु भगवान से भी ज्यादा कार्य हनुमान जी महाराज ने करके दिखाए। एक से एक भक्तों, इसके पीछे राज क्या है ये आप बात जानते हैं? भगवान से भी ज्यादा प्रभाव और शक्ति हनुमान जी महाराज में क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज सदैव अपने आप को भगवान का दास समझते थे, अपने आप को सदैव। कथा का सार यही है कि हम भी अपने आप को भगवान राम का और कृष्ण का दास समझेंगे तो संसार में कोई भी कार्य नामुमकिन नहीं है, है? नामुमकिन। जहां जहां जाएंगे, जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे, चाहे बिजनेस हो, घर हो, भक्ति हो, कहीं भी जिस फील्ड में जाएंगे, सदैव हमारी विजय होगी। कब? जब भगवान का दास बनकर जाएंगे, है? दास बनेंगे हम सबको, और कुछ नहीं, दास बनना है। और ये मुश्किल नहीं है भक्तों, दास बनना मुश्किल नहीं, क्योंकि दास बनना यही तो हमारा स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति वेदा भेद प्रकाश। ये जीव भगवान का नित्य दास है, और हमें भगवान का दास बनना यही सबसे बड़ी भक्ति है। जब तक हम ये भावना हृदय में रखेंगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, जीवन में नामुमकिन काम को भी नामुमकिन कर देंगे। कई लोगों ने कहा कि श्री प्रभुपाद जी 70 वर्ष की आयु में गए और इतने लोगों का उद्धार किए जो नामुमकिन था, परंतु श्री प्रभुपाद जी के हृदय में भगवान की भक्ति और मैं राधा और कृष्ण का दास हूं, ये दास्तान को लेकर श्री प्रभुपाद जी यहां से अमेरिका गए थे और अपने इस भगवत भक्ति की नींव श्री प्रभुपाद जी ने सबसे पहले अमेरिका में डाली, अपने प्रचार की नींव। हजारों लोग मदमस्त थे, नशे में चूर थे, 2400 घंटा नशे में रहने वाले लोग आज भगवान के नशे में झूमने लगे, इसके पीछे एकमात्र श्री प्रभुपाद की कृपा और भगवान के प्रति दास्तान। हम भी कभी कभी, हम लोग कभी कभी अच्छा प्रवचन करते हैं, अच्छा बोल देते हैं, मुझे खास करके मुझे कहते हैं प्रभु अच्छा बोलते हो करते हो, क्यों? भगवान के दास हैं इसलिए, इस जड़ देह में, इस पंच महाभूत के इस शरीर में कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि एक शब्द भी ठीक से बोल पाए, है? दास। और जिस दिन ये दास भाव निकल गया ना, पहले दिन आपने सुना था ना, नारद जी जो गिरे हैं, सिर के बल गिरे हैं, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, दास भाव यदि ये भूल गया और स्वामी भाव आ गया तो उसका पतन हो जाएगा। हमें भगवान का दास बनना है, भगवान का सेवक और भगवान की सेवा में लगे रहना है। जैसे हनुमान जी महाराज राम राजा बन गए, और राजा बनने के बाद हनुमान जी महाराज सारी सेवा राम की हनुमान जी करते थे। रुमाल लाना हो, पानी लाना हो, ये लाना हो, हनुमान जी महाराज सारी सेवा। अयोध्या की प्रजा जो थी थक गई कि बोले हम भगवान की सेवा करने का मौका हमको मिल ही नहीं रहा है। एक दिन हनुमान जी महाराज कुछ काम के लिए बाहर गए थे और ये लोगों ने पूरी कमिटी बना ली, राम सेवा कमिटी, भगवान राम की सेवा करने की कमेटी, और भगवान राम की जितनी भी सेवा थी पहले ये लिखो। और फिर सभी प्रजा में से सब लोग ने भगवान राम की सेवा को बांट लिया। हनुमान जी महाराज दूसरे दिन आए और भगवान के कक्ष में जा रहे थे, रोक दिया, नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? बोले कमेटी बन चुकी है और भगवान राम की सेवा सबको सौंप दी गई है। बोले अच्छा, सारी सेवा सौंप दी गई है? बोले हाँ, और जब लोग अपने सामने से कहेंगे मैं सेवा नहीं करूंगा तब आपको फिट कर देंगे वो सेवा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, सारी सेवा आपने सौंप दी, जरा लिस्ट बताओ सेवा का। सेवा का लिस्ट, और ये लोगों ने इतनी बुद्धि से लिखा था, एक भी सेवा नहीं छोड़ी थी। हनुमान जी ने सारा लिस्ट पढ़ा। अब बुद्धि निधाना तो है ही। हनुमान जी ने कहा एक सेवा आप लोग भूल गए हो। वो प्रजा के लोग झगड़ा करने लगे, मैं कह रहा था कुछ तो भूल रहे हैं। बोले कुछ नहीं भूल रहे हैं, सब लोग ने अपनी अपनी बुद्धि से सब कुछ लिखा दिया। हनुमान जी ने कहा एक सेवा भूल गए। बोले कौन सी सेवा? बोले राम जी को जब जम्हाई आती है तब चुटकी बजाने की सेवा आपने नहीं लिखी है। और देखो मैं कह देता हूं, ये जम्हाई कभी भी आ सकती है, इसलिए 2400 घंटा साथ में रहना पड़ेगा। ये है दास, ये है हनुमान जी महाराज, इसे कहते हैं भक्त। रात दिन हनुमान जी महाराज साथ में रहते थे। अब शाम का समय हुआ, सीता आई शाम को 8 बजे। हनुमान जी को कहा कि प्रभु अब आप प्रस्थान कीजिए, अब सेवा मुझे करने से। हनुमान जी ने कहा मैं क्यों निकलूं? सीता जी ने कहा देखो अब रात हो गई है, अब ये सेवा स्त्रियों की होती है, पत्नी की होती है, आप निकलो। बोले मैं क्यों निकलूं? ये तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज, ये क्या जाने ये स्त्री पुरुष, ये विवाह क्या होता है। कुछ लोग हनुमान जी के पास जाकर कहते हनुमान जी महाराज एक श्रीफल आपको चढ़ाऊंगा, मुझे मेरा विवाह हो जाए। अरे खुद का नहीं हुआ है आपका कैसे कराएगा? कम से कम किस व्यक्ति से क्या मांगना चाहिए ये भी बुद्धि होनी चाहिए। हनुमान जी महाराज को श्रीफल चढ़ाकर कहते हैं मुझे बच्चा हो जाए, वो खुद ब्रह्मचारी है, उससे ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का वरदान मांगो। पति चाहिए तो पार्वती से मांगो, जया पार्वती व्रत करते ही है ना सब लोग, किससे क्या मांगना ये भी बुद्धिमानी है। तो हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी, सीता देवी ने बहुत समझाया। बोले देखो रात की सेवा पति पत्नी की होती है, स्त्री की होती है, तुम जाओ कल सुबह आ जाना। हनुमान जी महाराज कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं क्यों जाऊं? बोले मुझ में और तुम में क्या फर्क है, तुम भी करो मैं भी करूं। अब ये सीता देवी थक गई, अब क्या समझाऊ इसे। तब हनुमान जी महाराज को कहो एक काम करो मेरे साथ चलो। एक कांच था, कांच के सामने लेकर गई, दोनों खड़े हैं। सीता देवी ने कहा देखो ये सिंदूर देख रहे हो मेरे सिर में है, मस्तक पर? बोले हाँ। बोले तुम्हारे मस्तक में है? बोले नहीं। चलो निकलो, ये अंतर है मुझ में और तुम में, इसलिए मैं कर सकती हूँ तुम नहीं कर सकते हो। हनुमान जी बेचारे चुप होकर निकल गए। लेकिन रात भर हनुमान जी को भगवान के विरह में नींद नहीं आई, यहाँ भगवान को भी नींद नहीं आई। हनुमान जी महाराज अरे चुटकी सिंदूर क्या लगा लिया, पूरा रात भर का सेवा ले लिया, रात भर सोचने पड़ गए। सुबह होने दो, हनुमान जी सुबह की राह देख रहे थे। सुबह हुई, बनिए की दुकान में गए, बनिए को थप्पड़ मार के जितना भी सिंदूर था निकाला, बाल्टी में डाला, पानी डाला, पूरा सिंदूर से स्नान करके सुबह अयोध्या के दरवाजे में जाकर बैठ गए। देवी सीता ने सुबह सुबह दूध लेने के लिए दरवाजा खोला होगा। देवी सीता ने दरवाजा खोला तो हनुमान जी महाराज, सीता देवी ने कैलेंडर में देखा ये तो होली भी नहीं है, आज न धुलेटी है न होली है, हनुमान जी महाराज ये कौन सा रूप बनाकर आए, क्या हो गया आपको? तब हनुमान जी ने कहा आप इतना सा सिंदूर लगाकर रात को सेवा किया, सिंदूर में स्नान करके आया हूं, जीवन भर तक सेवा करूंगा, है मैं सेवा छोड़ूंगा। ये है हनुमान जी महाराज, हनुमान जी की भक्ति दास सेवा। अयोध्या में जब भगवान रामचंद्र पहुंचे और जिन जिन लोगों ने भगवान राम को सीता को प्राप्त करने में सहायता दी थी सबको भगवान उपहार देने लगे। सब लोग लाइन में बैठे थे, सबको बुला बुला कर इन्होंने अच्छा कार्य किया, इन्होंने अच्छा किया, सबको दे रहे थे। उनमें हनुमान जी का टर्न आया, हनुमान जी आए उपहार लेने के लिए तो देवी सीता प्रसन्न हो गई। और सीता प्रसन्न होकर सोचा कि सबसे ज्यादा हनुमान मैन ऑफ द मैच इसको देना चाहिए, हनुमान सबसे ज्यादा मेहनत इन्होंने की है। तो देवी सीता के गले में नौ रत्न हार था। ये हार की कथा, ये हार पहले कुबेर जी के पास था। रावण ने कुबेर को हराकर वह हार अपनी तिजोरी में रख लिया। भगवान राम ने विभीषण को जब राजा बनाया तो वह हार विभीषण के पास आया। तब विभीषण को लगा कि प्रभु ने मुझे इतना राज्य दिया है, कम से कम एक हार तो दे दूं। विभीषण की इतनी इच्छा नहीं थी पर लेकिन प्रभु को दे दिया। भगवान ने सोचा मैं क्या करूंगा, भगवान ने अपनी पत्नी को पहना दिया, सीता को। और उस हार के ऊपर सबकी नजर थी, पूरी प्रजा उस हार को देखकर बैठी थी। देवी सीता देवी के गले में हार था और सीता देवी ने वह नव रत्न हार अपने गले से उतार कर हनुमान जी महाराज के गले में डाल दिया। बोले मैन ऑफ द मैच आप हो, सबसे ज्यादा मेहनत आपकी है, आपका धन्यवाद आभार। हनुमान जी महाराज लेकर अपने स्थान पर गए और उनका स्वभाव से मजबूर नव रत्न हार एक एक हीरे अरबों खरबों रुपये के थे। हनुमान जी महाराज खींचे तोड़े और दांत में डालकर फोड़ने लगे, चूरा बनाने लगे। और वहां कितनों को तो हार्ट अटैक आ गया है? विभीषण को तो भर्ती करना पड़ा हॉस्पिटल में। अरे बाप रे, मैंने क्यों दिया सीता को और सीता ने बंदर को दे दिया हार। कुछ लोगों ने कहा हनुमान जी महाराज नहीं चाहे तो यहाँ फेंको, हम लोग रख लेते हैं। तो कई लोग उस हार के ऊपर दृष्टि लगाकर बैठे थे लेकिन जामवन जी से नहीं रहा गया। जामवन जी आए, महाराज क्या कर रहे हो, हार को तोड़ रहे हो, हमारे ऊपर कृपा कर दो, आपको नहीं चाहिए तो। बोले नहीं चाहिए, प्रभु ने दिया है इसलिए मुझे तो चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ। बोले क्या देख रहे हो? बोले मैं इस हार को तोड़कर इस हीरे में देख रहा हूँ मेरे प्रभु है कि नहीं। बोले क्यों? बोले जिस वस्तु में मेरे प्रभु नहीं होते हैं वह वस्तु मेरे कुछ काम की नहीं है, जो नहीं मेरे राम का वो नहीं कछु काम का। मैं देख रहा हूं इस हार में मेरे प्रभु है कि नहीं, तोड़ तोड़ कर देख रहा हूं। तब जामन जी ने मजाक करते हुए होता था कभी कभी मजाक हनुमान जी हो जाए, जामन जी ने मजाक करते हुए कहा अच्छा जो वस्तु में आपके स्वामी राम और आपकी माँ सीता नहीं है उस वस्तु को आप त्याग देते हो? बोले हाँ त्याग देते हैं। बोले तो महाराज आपके शरीर में है राम और सीता? बोले हाँ है। बोले यदि है तो दिखाओ। करोड़ों लोगों के बीच में हनुमान जी महाराज ने उस समय अपने वज्र के समान नाखून को छाती में डालकर फाड़कर दुनिया को दिखा दिया, राम और जगत जननी सीता उनके हृदय में विराजमान है। ये है हनुमान जी महाराज, ये है भक्त। हनुमान जी महाराज से कामना करनी चाहिए प्रभु हम भक्त बने, दास्य भाव हमारे हृदय में आए। भक्तों इसका सार यही है कि हमें भगवान का दास बनना है। और भगवान के दास का अर्थ क्या होता है? भगवान जो चाहते हैं वह करना। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम निरंतर लेते रहें, हम उनकी कथा निरंतर सुनते रहें। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है अब तो हम बिछड़ेंगे, कब कहाँ मिलेंगे कोई भरोसा नहीं है, है? लेकिन कहीं भी मिले, किसी भी भक्तों से मिले तो भगवत कथा सुनते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। मुझे पता था समय की बहुत कमी होगी, इसलिए मैंने एक पेपर सबको दिया है। सबको मिल गया है, आप जब आ रहे हैं तो सबको एक एक पेपर मिला है। इस पेपर में लिखा गया है कलयुग का वास्तव में सार। कलयुग में सुखी होना चाहते हैं, मृत्यु के बाद भगवत धाम भगवान का नाम जपिए और श्री प्रभुपाद जी के जितने भी इस्कॉन मंदिर हैं उसमें जाइए, जितने भी कथा सत्संग प्रवचन होते हैं वहाँ जाकर आप भगवत कथा का श्रवण कीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। भक्तों, यहाँ पर कार्य समाप्त नहीं होता है, यहाँ से कार्य शुरू होता है। भक्ति का बीज मिला है, अब इस भक्ति के बीज को आप अपने हृदय में बोइए। और इस बीज को कैसे उगाना है? श्रवण और कीर्तन के द्वारा। आप निरंतर भगवान की कथा सुनिए, निरंतर कीर्तन कीजिए, जिससे आपके हृदय का जो बीज है वो उगता रहेगा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।